पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अर्पा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित।
अर्पा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार में सुनिए मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रूपेंद्र राव का व्याख्यान।
शिक्षा तथा ज्ञान का उन्नयन प्रसारण तकनीकी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़।
प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रूपेंद्र राव, मनोविज्ञान विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय। आज हम परामर्श और निर्देशन में प्रयुक्त कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। इनमें से एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या जिसको चिकित्सा के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है वह है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड 1856 और 1939 ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऐतिहासिक रूप से मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उन शुरुआती अवधारणाओं में से है जिन्हें जनता ने पहचान मिली। सिगमंड फ्रायड ने अपने अनुभव, विचारों तथा वर्षों के नैदानिक चिकित्सा के अनुभव के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अनेकों मनोवैज्ञानिक उनके इस सिद्धांत से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं। या तो वे फ्रायड के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, जैसे रोलो में एल्बर्ट एलिस फ्रायड के विपरीत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। रॉजर्स, स्किनर तथा कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे अन्ना फ्रायड, एरिक्सन, कार्ल जूंग, सुलिवान आदि ने फ्रायड के सिद्धांत के समर्थन में अपने संप्रत्यय में कुछ विचार जोड़ते हुए नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मन के स्तर। फ्रायड के अनुसार मानव प्रकृति को उनके मन के तीन स्तरों के आधार पर समझा जा सकता है। ये तीन स्तर है चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन कॉन्शियस से तात्पर्य मन के उस भाग से है जिसका संबंध वर्तमान से होता है, अर्थात इसमें बाहरी वातावरण से संबंधित तात्कालिक अनुभूतियां व संवेदनाएं होती हैं जो इस समय व्यक्ति के मन में चल रही हैं। अर्धचेतन या सबकॉन्शियस, यह चेतन व अचेतन के मध्य का भाग है, अर्थात न तो पूर्णतः चेतन होता है और न ही पूर्णतः अचेतन। इसमें अनुभूति, इच्छाएं, विचार, भाव आदि होते हैं जो वर्तमान में चेतन में नहीं होते, परंतु जरा से प्रयास करने पर वे हमारे चेतन में आ जाते हैं। यह चेतन व अचेतन के मध्य पुल का कार्य करता है। तीसरा जो प्रकार मन का फ्रायड ने बताया है वो है अचेतन, अनकॉन्शियस। फ्रायड के अनुसार हमारे व्यक्तित्व व व्यवहार पर अचेतन का प्रभाव या अनुभूतियाँ विचारों की तुलना में बहुत अधिक पड़ती है। इसका आकार सबसे बड़ा होता है। अचेतन का शाब्दिक अर्थ है चेतन से परे होना, अर्थात जो भाव, अनुभूतियाँ, इच्छाएँ, आवश्यकताएँ कर दी जाती हैं वे अचेतन में संग्रहित हो जाती हैं पर समाप्त नहीं होती। वह अवसर मिलते ही चेतन में वह आकार लेती हैं और व्यवहार और अनुभूतियों को प्रभावित करती हैं। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व निर्माण के तीन भागों को बताया गया है और इसे तीन भागों में बांटा गया है, जिनमें प्रमुख है उपाहम या ईट, अहम या ईगो और पराहम या मतलब सुपर ईगो। उपाहम की प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं। यह अनैतिक, अतार्किक, आक्रामक, कामुक या नियमों का न मानने वाली होती हैं। उपाहम आनंद के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। छोटे बच्चे में उपाहम का भरमार होती है, परिस्थितियों व नैतिकता को सही समझता है, वह हर शर्त पर अपनी आवश्यकता को पूरा करना चाहता है। उपाहम पूर्णतः अचेतन होता है, इसका संबंध वास्तविकता से नहीं होता। अगर उपाहम को नियंत्रित न किया जाए व अपनी मर्जी से इसे कार्य करने के लिए छोड़ दिया जाए तो उपाहम व्यक्ति को खत्म भी कर सकता है या संकट में डाल सकता है, क्योंकि उपाहम अत्यधिक आक्रामक है। जिन लोगों में उपाहम की प्रधानता होती है, बड़े होने पर उपाहम नियंत्रित नहीं होता, वे कार्य करने से पहले उनके परिणामों का ठीक ढंग से चिंतन नहीं कर पाते। इसमें दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। एक होता है जीवनी शक्ति, जिसे इरोस का नाम दिया गया है, और दूसरा होता है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिसे थैनेटोस का नाम दिया गया है। फ्रायड ने इरोस को कामुकता से संबंधित बताया है और अपने सिद्धांत में इसने सुधार करते हुए इसे जीवन संवर्धन ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया है। मृत्यु मूल प्रवृत्ति व्यक्ति के आवश्यक आक्रामक व्यवहार करने की प्रवृत्ति के रूप में प्रदर्शित होती है। इन दोनों ही शक्तियों को फ्रायड ने लिबेडो का नाम दिया। उपाहम के सोचने के तरीकों को प्राथमिक प्रक्रम कहा जाता है। यह प्रणोद मूल प्रवृत्ति तस्वीरों के रूप में कार्य करती है। एक अन्य महत्वपूर्ण स्तर जो फ्रायड ने व्यक्तित्व निर्माण के लिए महत्वपूर्ण माना है वो होता है अहम या ईगो का स्तर। बच्चा जब जन्म के बाद पूर्णतः उपाहम के दौरान अधीन होता है तो वह अपनी हर इच्छा की पूर्ति चाहता है, पर सामाजिक व नैतिक मूल्यों के कारण उसकी हर इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती, जिससे तनाव या निराशा उत्पन्न होती है। धीरे धीरे बालक का संबंध वास्तविकता से स्थापित होता है। इस प्रकार बालक अहम का विकास प्रारंभ होता है। वास्तविकता के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अहम को सोचने के तरीकों का द्वितीय प्रक्रम भी कहा जाता है। यह तार्किक तरीका है जो कि परिस्थितियों द्वारा विकसित होता है। एक स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए अहम का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण स्तर फ्रायड ने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बताया है वह होता है पराहम या सुपर ईगो। पराहम को व्यक्तित्व की नैतिक शाखा के रूप में माना गया है। यह क्या आदर्श है के अनुरूप कार्य करता है। जैसे बच्चा बड़ा होता है जब, तो वह सामाजिकरण के रूप में या माता पिता के साथ तादात्म्यकरण के रूप में बहुत सारे गुणों को सीखता है। बालक अपने माता पिता से सही व गलत सीखने का प्रयास करता है। माता पिता व समाज के नियमों व शिक्षाओं के अनुसार कार्य करने पर बालक को धनात्मक पुनर्बलन अर्थात प्यार या प्रशंसा मिलती है। नियमों के उल्लंघन से सजा भी मिलती है, जिससे बालक में अपराध का भाव उत्पन्न होता है। इस प्रकार धीरे धीरे बालक में पराहम का विकास होता जाता है। पराहम भी उपाहम की तरह अवास्तविक होता है। यह वास्तविकता का ख्याल नहीं रखता। पराहम अहम को नैतिक आदर्शों की पूर्णता के लिए बाध्य करता है। पराहम इस बात पर का ख्याल नहीं करता कि अहम को वातावरण में उपस्थित किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब कुछ विकास की अवस्थाओं की चर्चा यहाँ सिगमंड फ्रायड करते हैं। उन्होंने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार बच्चों के जन्म से ही यह उपस्थित होता है और विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। परामर्शदाता के लिए इन मनोलैंगिक अवस्थाओं का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन अवस्थाओं का सीधा संबंध उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। इसमें जो पहला अवस्था मानी जाती है वह मुखावस्था या ओरल स्टेज है। यह मनोलैंगिक विकास की पहली अवस्था है। एक वर्ष से कम आयु के बच्चे में इस प्रकार की अवस्था होती है। इसका जो क्षेत्र होता है वो मुँह होता है। फलस्वरूप बच्चे के मुख से की जाने वाली क्रियाओं से उसे सुख की प्राप्ति होती है। इस अवस्था में कम या अधिक मात्रा में मुखवर्ती होने पर दो तरह के व्यक्तित्व का विकास होता है, एक निष्क्रिय व्यक्तित्व और एक अनुवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व। निष्क्रिय व्यक्तित्व वाले में आशावादिता, विश्वास और दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता का शील गुण पाया जाता है। इसके विपरीत मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में अधिक प्रभुत्व, शोषण, परपीड़न का शील गुण भी पाया जाता है। पुरुषों में अत्यधिक जो धूम्रपान करते हैं इस प्रकार की प्रवृत्ति अधिक मिलती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्टेज फ्रायड ने बताया है वो होता है एनल स्टेज। यह अवस्था 1 से 2 साल के मध्य के बच्चों में पाई जाती है और ऐसे बच्चों में आनंद की जो अनुभूति होती है वह अंतर्द्वंद का अनुभव करता है, और अंतर्द्वंद आंतरिक मूल प्रवृत्ति और वातावरण की मांगों के मध्य होता है। तीसरी जो अवस्था फ्रायड ने बताई फेलिक्स स्टेज, यह मनोलैंगिक विकास की तीसरी अवस्था है जो 5 वर्ष की अवस्था में पाई जाती है। इस अवस्था में प्रत्येक बच्चे कुछ ग्रंथियों से ग्रसित होते हैं। कुछ बच्चों में इस प्रकार के गुण अधिक पाए जाते हैं और कुछ बच्चों में कम पाए जाते हैं। इस प्रकार की अवस्था में माता पिता के स्नेह और दुलार से प्रतिद्वंद्वी के प्रति एक भाव का निर्माण होता है, और ये अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इस अवस्था में यदि सही ढंग से उसका निर्धारण हो जाए या फिर सही ढंग से उसकी पूर्ति हो जाए तो आगे उसका व्यक्तित्व तो प्रभावित नहीं हो पाता। चौथी जो अवस्था महत्वपूर्ण अवस्था फ्रायड ने बताई है वो अव्यक्त अवस्था होती है। यह 6 से 12 वर्ष की आयु की होती है। इस अवस्था में वह ऊर्जा का केंद्र दोस्तों की ओर, खेलने की ओर और संज्ञानात्मक या शारीरिक कौशलों के विकास में परिवर्तित हो जाता है। पांचवी जो अवस्था फ्रायड ने बताई है वो होता है जेनाइटल स्टेट या जनेन्द्रीय अवस्था। यह मनोलैंगिक विकास की 5वीं अवस्था है। इसके पश्चात भी व्यक्तित्व का विकास निरंतर चलता रहता है। यह लगभग 12 वर्ष की उम्र में होता है। इसमें अलग अलग अनुभव होने के साथ साथ अलग अलग व्यक्तियों में उसका व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव देखा गया है। इसके अतिरिक्त फ्रायड ने रक्षात्मक प्रक्रम का संप्रत्यय भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से परिभाषित किया है। रक्षात्मक प्रक्रम या डिफेंस मैकेनिज्म संप्रत्यय मूलभूत रूप से सिगमंड फ्रायड ने दिया, परंतु उनकी पुत्री अन्ना फ्रायड ने, नव फ्रायडियन वादियों ने इन सिद्धांतों को और विस्तृत किया। रक्षात्मक प्रक्रम चाहे वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना हो, घटना के स्वरूप में प्रत्यक्षीकरण करना हो या फिर घटना को मानने से इनकार करना हो। रक्षात्मक प्रक्रम अचेतन स्तर पर होता है, यह समस्या का समाधान नहीं करता पर समस्या के स्वरूप को विकृत कर हमें चिंता से तुरंत राहत देता है। रक्षात्मक प्रक्रम ज्यादा उपयोग स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास में बाधा उपस्थित करता है। कुछ प्रमुख रक्षात्मक प्रक्रम की चर्चा सिगमंड फ्रायड करते हैं, जिनमें प्रमुख प्रक्रम जो रक्षात्मक प्रक्रम है, पहला है दमन या रिप्रेशन। यह सबसे प्रारंभिक और मूल रक्षा युक्ति है। इसमें व्यक्ति तनाव, चिंता, भय, मानसिक संघर्ष उत्पन्न करने वाली असामाजिक या कामुक इच्छाओं को चेतन से हटाकर अचेतन में भेजता है। यह प्रक्रम अचेतन होता है और स्वयं व्यक्ति को भी इसका ज्ञान नहीं होता। व्यक्ति पहले कुछ भूलता है और बाद में यह भी भूल जाता है कि वह क्या भूला था। अचेतन में दबी हुई इच्छाएं पूर्णतः नष्ट नहीं होती, वह अचेतन में रहती हैं और समय मिलने पर अभिव्यक्त भी होती हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण रक्षात्मक प्रक्रम होता है वो होता है युक्तिकरण या रैशनलाइजेशन। युक्तिकरण अर्थात सामान्य रूप से बहाना बनाना, किसी कार्य को करने का कारण बताना जो वास्तविकता से अलग है। इस प्रक्रम में व्यक्ति अपनी असफलताओं के लिए सामाजिक रूप से अस्वीकरण व्यवहार करता है। सामाजिक स्वीकार्य जिन बातों को मिलता है उनको वह करने से हटता है या उनको करने के लिए अपनी रुचि प्रदर्शित नहीं करता। जैसे एक छात्र परीक्षा में कम अंक पाता है और हॉस्टल के वातावरण में कोई सहयोगी उसका नहीं रहता है, तो वैसा बच्चा अपने पिता के डांट या मार से बचने के लिए दूसरों पर इस प्रकार के परिस्थितियों को थोपता है और युक्तिकरण का मार्ग अपनाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण रक्षात्मक प्रक्रम है वो है प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन। इस प्रक्रम में व्यक्ति अपने किसी कष्टकर या अप्रिय इच्छा या प्रेरणा से ठीक विपरीत इच्छा या प्रेरणा अभिव्यक्त करता है। इसे प्रतिक्रिया निर्माण भी कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो किसी को पसंद नहीं करता है, वह किसी व्यक्ति को पसंद करना चाहता है, तो वह इस युक्ति का प्रयोग करके प्रतिक्रिया निर्माण करता है या एक काल्पनिक स्थिति का निर्माण करके अपने भावों को व्यक्त करता है। क्रम प्रतिक्रिया के दो चरण सम्मिलित होते हैं। पहले चरण में व्यक्ति अप्रिय या कष्टकर विचारों या भावों को अचेतन में दमन कर देता है और दूसरे चरण में व्यक्ति इन दमित इच्छाओं या विचारों को के ठीक विपरीत चेतन स्तर पर व्यक्त करता है। अगला जो महत्वपूर्ण रक्षात्मक प्रक्रम है वह है प्रतिगमन या रिग्रेशन। प्रतिगमन अर्थात पीछे की ओर लौटना। वर्तमान प्रतिगमन का तात्पर्य कम परिपक्व ढंग से व्यवहार करना होता है। एक व्यक्ति बालक की तरह व्यवहार करता है तो वह प्रतिगमन प्रदर्शित कर रहा है। जब व्यक्ति जिंदगी में किसी परेशानी या तनावपूर्ण अनुभव से गुजरते हैं या कम परिपक्व व्यवहार करते हैं या चिंता प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रकार के व्यवहार प्रतिगमन के रूप में भी वो सामान्य जीवन में व्यवहार में लाते हैं। जैसे किसी मित्र के साथ अपने बातों को शेयर करना या फिर रोना, ये भी प्रतिगमन क्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण रक्षात्मक प्रक्रम बताया गया है वो होता है प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन। प्रक्षेपण अपनी कमियों या कमजोरियों को दूसरे पर आरोपित करना या स्वयं उन कमियों के न होने से या अपने व्यक्तित्व में होने से इनकार करना होता है। यह अमान्य प्रस्तुतियों, मनोवृत्तियों एवं व्यवहारों की अचेतन रूप से आरोपित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जैसे एक छात्र यदि परीक्षा में फेल हो जाता है तो पेपर बनाने वाले को, कॉपी जांचने वाले को या फिर अध्यापक के न पढ़ाने को अपनी असफलता का कारण बता सकता है। अगला जो रक्षात्मक प्रक्रम है वह होता है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। इस रक्षात्मक प्रक्रम में व्यक्ति अपनी भावनाओं को किसी वस्तु से हटाकर दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर संबंधित कर देता है। सामान्यतः ये भावनाएं आक्रामकता से संबंधित होती हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने ऑफिस में बॉस से नाराज होकर आए और अपना गुस्सा घर में छोटे बच्चों पर निकाले, तो यह विस्थापन का एक उदाहरण होगा। उदात्तीकरण भी एक रक्षात्मक प्रक्रम है। इस रक्षात्मक प्रक्रम में सामाजिक रूप से अस्वीकार्य इच्छाओं को या फिर स्वीकार्य कार्यों के रूप में प्रकट किया जाता है। जैसे आक्रामकता या लालच से संबंधित इच्छाएं इस प्रकार के उदात्तीकरण के भाव के रूप में प्रकट होती हैं। समाज में जितने भी कलात्मक या सांस्कृतिक उपलब्धियां देखने को मिलती हैं वह उदात्तीकरण का ही परिणाम मानी जाती है। इसके अतिरिक्त नकारना भी एक रक्षात्मक प्रक्रम बताया गया है। अगर कोई तथ्य या घटना हमारे लिए अत्यंत अरुचिकर या कष्टप्रद है और हम अपने अस्तित्व को मानने से इनकार कर देते हैं और इस प्रकार हम थोड़े समय के लिए तकलीफ से अपने आप को बचा लेते हैं या घटनाओं से इस प्रकार से हम बच जाते हैं, तो ये भी रक्षात्मक प्रक्रम का एक उदाहरण माना जाएगा। उसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन, ये भी एक प्रक्रम है। जब व्यक्ति किसी क्षेत्र में असफल होता है या दूसरे क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के पहले क्षेत्र में अपनी हार की क्षतिपूर्ति करता है तो इसे रक्षात्मक प्रक्रम कहा जा सकता है। जैसे एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है पर खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो वह पढ़ाई की प्रति क्षतिपूर्ति खेलों के माध्यम से कर रहा है। इसके अलावा दिवास्वप्न या फैंटेसी या डे ड्रीमिंग भी एक रक्षात्मक प्रक्रम है। जब व्यक्ति वास्तविक जीवन से अत्यधिक परेशान हो जाता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो वह काल्पनिक दुनिया बना लेता है जिसमें थोड़ा वह आराम पाता है। कोई व्यक्ति यदि पैसे की तंगी से गुजर रहा हो तो काल्पनिक से सोच पा सकता है कि उसके पास बहुत सारा धन है। इस प्रकार रक्षात्मक युक्ति का प्रयोग वह कर सकता है। इसके अतिरिक्त रूपांतरण या कन्वर्सेशन, ये भी एक रक्षात्मक प्रक्रम है। रूपांतरण एक ऐसी प्रतिक्रिया युक्ति है जिसमें व्यक्ति अपना संवेगात्मक द्वंद लक्षण के रूप में प्रकट करता है। शारीरिक लक्षण के रूप में यह इसका आधार नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी पार्टी में जाने से बचना चाहता है तो पार्टी में जाने का वक्त आते ही उसके सर में तेज दर्द होगा या फिर किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी का वह अनुभव करता है या फिर उसका उल्लेख करता है। इसी प्रकार शमन भी एक तरह से रक्षात्मक प्रक्रम है। इसमें कुछ विचार, यादें या भावनाएं अच्छी जो नहीं लगती हैं वह स्वयं अपनी इच्छा से उसे दबा लेता है या उसका दमन कर लेता है। यह सामग्री हमारे अंदर अचेतन में रहती हैं और चेतन में आने का प्रयास करते रहती हैं। इसके अतिरिक्त मनोविश्लेषण सिद्धांत की कुछ प्रमुख प्रविधियाँ हैं जिसका प्रयोग मनोचिकित्सा के रूप में या फिर परामर्श की चिकित्सा के रूप में किया जाता है। आइए हम उसका उल्लेख करते हैं या उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली विधि जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत बहुतायत में प्रयुक्त की जाती है वह है मुक्त सहचर या फ्री एसोसिएशन। कभी कभी अचेतन में दबी हुई पड़ी हुई इच्छाओं बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढती हैं। जीवन में आक्रामकता या फिर इस प्रकार के भाव जिनको व्यक्ति दमित कर लेता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत परामर्शदाता या परामर्शग्राही को शांत कर उसकी बाल्यकालीन यादों को वह बाहर निकालता है, भावनात्मक अनुभवों को बताने के लिए कहता है और उसे कहता है कि कोई भी विचार यदि आप बता रहे हैं तो उसे बिना सोचे ही उन विचारों को आप प्रकट कर दें और वह बिना छुपाए या बिना बताए इन बातों को बता देता है जिससे वह एक फ्रीनेस या फिर खालीपन का अनुभव करता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण विधि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत बताई गई है वह होती है स्वप्न विश्लेषण या ड्रीम एनालिसिस। फ्रायड के अनुसार स्वप्न अचेतन को समझने का एक सशक्त माध्यम है। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली में परामर्शग्राही को रोजाना अपने स्वप्न परामर्शदाता को बताने के लिए कहा जाता है। परामर्शदाता उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण दो आधारों पर किया जाता है। पहला, परामर्शी ने क्या बताया है व बताए गए तथ्यों में छुपा हुआ क्या अर्थ है। परामर्शी ग्राही द्वारा स्वप्न की सामग्रियों को व्यक्त विषय के रूप में चेतन के रूप में लाया जाता है। इस प्रकार प्रतीकात्मक रूप से वह चेतन के अभिव्यक्ति को अव्यक्त विषय के रूप में कहता है। इस प्रकार स्वप्न के विश्लेषण करने से अचेतन को समझने की में आसानी होती है। बाल्यकालीन अनुभव, इच्छाओं आदि को इसके माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है या बताया जा सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत प्रविधि जो प्रयोग की जाती है वह होता है अंतरण का विश्लेषण या एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस। अंतरण परामर्शग्राही का परामर्शदाता के प्रति धनात्मक प्रतिक्रिया है। इसमें परामर्शग्राही परामर्शदाता को अपने भूतकालीन जीवन के महत्वपूर्ण अनुभव या महत्वपूर्ण इच्छाओं को बताता है। वह परामर्शदाता को एक अभिभावक के रूप में देखता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। इन भावनाओं के व्यक्त होने का एक चिकित्सकीय प्रभाव होता है। संवेगात्मक भावनाएं विसर्जन का कार्य करती हैं और भूत में क्या हुआ था और आगे क्या हो सकता है इनके भी संबंध का कार्य भी इसके माध्यम से किया जाता है। एक अगली अवस्था जो महत्वपूर्ण है वह है अवरोध का विश्लेषण या एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस। कई बार परामर्शग्राही शुरू में सुधार प्रदर्शित करता है और बाद में इसकी गति अत्यधिक धीमी हो जाती है। इस उपचारात्मक प्रक्रम में परामर्शग्राही कई प्रकार के अवरोधों को देखता है जैसे नहीं आना, देर से आना या फिर परामर्श की फीस नहीं देना या बाल्यकालीन अनुभव को ठीक से न बताना या विचारों को रोकना। इस प्रकार के व्यक्तित्व के बहुत सारे गुण परामर्शदाता को देखने में मिलते हैं जो परामर्शग्राही नहीं बताता है। तो अवरोधों को समझने के समय या फिर अवरोधों का विश्लेषण करते समय इन बातों का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रविधिया है वो होता है स्पष्टीकरण या इंटरप्रिटेशन। मनोविश्लेषणात्मक प्रक्रम में परामर्शग्राही सोच विचार या भाव अनुभव तथ्यों को समझता है, उसका विश्लेषण करता है। हर चरण में परामर्शदाता परामर्शग्राही के स्वप्नों अनुभव और अवरोधों को समझने का प्रयास करता है। परामर्शदाता परामर्शग्राही को अपने भूत और वर्तमान के निजी जीवन के अनुभव को स्वयं से समझने में मदद करता है और उस पर उसका ध्यान आकृष्ट करता है और इसके माध्यम से अंतर्ज्ञान जागृत करने का प्रयास करता है। अब हम देखते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का क्या लक्ष्य हो सकता है या क्या लक्ष्य होना चाहिए। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत परामर्शग्राही के अनुसार बदलता रहता है। विशेष रूप से मनोविश्लेषण के लक्ष्य निम्न प्रकार से बताए जा सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत अभियोजन या समायोजन। मनोविश्लेषणात्मक का प्राथमिक लक्ष्य परामर्शदाता के अपने व्यक्तित्व के अचेतन भाग के प्रति जागरूक करना होता है। अचेतन में दमित इच्छाएं, विचार या अनुभव होते हैं जो दर्द से भरे या डरावने हो सकते हैं। दमित होने पर इनका प्रभाव खत्म नहीं होता, वे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। दमित होने से उनका समझना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। मनोविश्लेषणात्मक परामर्शग्राही के प्रति अंतर्ज्ञान पैदा कर व्यक्ति के समायोजन में मदद करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसका लक्ष्य है वह है विकासात्मक अवस्था को पूर्ण करना। मनोविश्लेषणात्मक का महत्वपूर्ण लक्ष्य विकासात्मक अवस्था को प्राप्त करना है। बाल्यावस्था में जिनका बाल्यावस्था अच्छा या पूर्ण नहीं होता, व्यक्तित्व के पुनर्गठन के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यह प्रक्रम लंबा और खर्चीला होता है। इससे व्यक्ति अवरोधित विकासात्मक अवस्था को पार कर अगली अवस्था में प्रवेश करता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण लक्ष्य मनोविश्लेषणात्मक का बताया गया वह होता है मनोविश्लेषणात्मक के माध्यम से व्यक्तित्व के समायोजन के साथ साथ वातावरणीय समायोजन को प्राप्त करना। विशेषकर कार्य या नज़दीकी रिश्तों में इस प्रकार की भावना बहुत प्रबल होती है। अहम के कार्य इस प्रकार मजबूत बनाना और व्यक्ति को प्रत्यक्षीकरण या वास्तविक परिस्थिति के आकलन करने के लिए सक्षम बनाना भी मनोविश्लेषणात्मक कार्य का उद्देश्य है। इस समय परामर्शदाता की क्या भूमिका होती है, थोड़ा सा इसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। परामर्शदाता इस समय सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण कर परामर्शग्राही को अपने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। विशेषकर बाल्यकालीन अनुभव को जब परामर्शग्राही अपने अनुभव से बताता है तब परामर्शदाता केवल उसको सुनता है और उसके बाल्यकालीन अनुभव को बताने के लिए प्रेरित करता है। परामर्शदाता इन बाल्यकालीन अनुभव भूतकालीन अनुभूतियों का विश्लेषण करता है और इसके माध्यम से अंतर्ज्ञान पैदा करने की कोशिश करता है। यहाँ परामर्शदाता सक्रिय और असक्रिय दोनों तरह की भूमिकाएं निभाता है। परामर्शग्राही के लिए विश्लेषण का कार्य करता है, प्रविधियों का मूल्यांकन करता है। इनमें कई प्रविधियां जैसे प्रक्षेपण प्रविधियां, प्रोजेक्टिव टेस्ट, इंक ब्लॉट टेस्ट का भी वह इस्तेमाल करता है और मूल्यांकन के इस दौरान परामर्शग्राही को समस्या के अनुसार वर्गीकृत कर उसके आगे उपचार की योजना भी परामर्शदाता बनाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो बताई गई हैं। पहली जो इसकी विशेषता है, यह अचेतन मन के मानव व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभाव डालता है। फिर इस विधि के बाद द्वारा मनोविश्लेषणात्मक यंत्रों को आधार प्रदान किया जा सकता है, जैसे रोशा परीक्षण या इस प्रकार के प्रोजेक्टिव टेस्ट के माध्यम से मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का लाभ बहुत मिलता है या देखा गया है। ऐसे रोगियों के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जैसे हिस्टीरिया या चिंता या फोबिया के रोगियों के लिए ये बहुत लाभदायक चिकित्सा पद्धति है। विकासात्मक प्रक्रम को पहचानने में यह बहुत बल देता है। तीव्र समायोजन कठिनाइयों वाले मरीजों को ठीक करने में एक बहुत सशक्त माध्यम माना गया है। इन सब विशेषताओं के होते हुए भी कुछ सीमाएं हैं जो मनोविश्लेषणात्मक प्रक्रिया में देखी गई हैं। सबसे पहला यह है कि बहुत खर्चीला और समय लेने वाला प्रविधि है। इसमें बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, परामर्शदाता को बहुत प्रशिक्षित होना आवश्यक है। दूसरा, यह सभी व्यक्तियों के साथ नहीं किया जा सकता। फिर इस विधि का नैदानिक मनोवैज्ञानिक में मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग अधिक किया जाता है। समायोजन से संबंधित कठिनाइयों से जुड़ी होने के कारण सामान्य परिस्थितियों में इसका उपयोग संभव नहीं है। इन सब विशेषताओं या सीमाओं के पश्चात भी यह बहुत ही प्रचलित और सकारात्मक विधि मानी जाती है, जिसमें पर्याप्त प्रशिक्षण के साथ साथ परामर्शदाता या फिर मनोचिकित्सक इन विधियों का प्रयोग कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आलोकित पथ के अनुगामी अमृत कलश तुम्हारा है, विश्व पटल पर ज्ञान की गंगा बहे, ये लक्ष्य हमारा है, बहे ये लक्ष्य हमारा।